आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों, BibleWani.com में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। आज के बाइबल स्टडी में हम सीखेंगे इज़राइल का इतिहास। परिचय। जब आदम और हव्वा पाप में गिरे, तब अदन की वाटिका से बाहर निकाले गए। मनुष्य जाति पाप करते रहे और परमेश्वर से दूर होते रहे। उनको अपनी संगति में वापस लाने के लिए परमेश्वर ने अब्राहम नामक एक व्यक्ति को चुना। परमेश्वर की योजना यह थी कि अब्राहम के वंश को वह अपनी निज प्रजा बनाकर उनको अपने नियम देगा। उस जाति के द्वारा संसार के अन्य लोग भी परमेश्वर के पास आएंगे और नियुक्त समय पर परमेश्वर अब्राहम के वंश में ही अपने पुत्र को भेजेगा, जो सारे जगत के लिए उद्धारकर्ता ठहरेगा। अब्राहम की बुलाहट। बाइबल के अनुसार इज़राइल का इतिहास उत्पत्ति 12 से शुरू होता है, जहां अब्राहम को परमेश्वर की बुलाहट प्राप्त होती है। जहां अब्राहम के पिता का नाम तेरह था, वे मूर्ति पूजक लोग थे। जब तेरह और अब्राहम का परिवार मेसोपोटामिया के ऊर देश में रहते थे, तब अब्राहम को तेजोमय परमेश्वर प्रकट हुआ। परमेश्वर ने अब्राहम को उस देश में जाने के लिए बुलाया जो वह उसे दिखाने वाला था। इस प्रकार जब अब्राहम को बुलाहट प्राप्त हुई, तब परमेश्वर ने उसको एक बड़ी जाति बनाई और उसका नाम महान करने और उसे आशीष का कारण बनाने का वायदा किया। कनान देश में परमेश्वर ने अब्राहम से वायदा किया और वाचा भी बांधी कि वह देश और उसको और उसकी पीढ़ियों को दिया जाएगा। लेकिन अब्राहम के वंशजों को उस देश में आने से पहले 400 साल तक एक देश में दासत्व में रहना पड़ेगा। अब्राहम विश्वासियों का पिता। जब अब्राहम 99 वर्ष का हुआ, तब परमेश्वर ने उसका नाम अब्राम से बदलकर अब्राहम रखा, जिसका अर्थ है बहुत सी जातियों का पिता। वायदे के अनुसार अब्राहम को एक संतान उत्पन्न हुई और उसका नाम इसहाक रखा गया। अब्राहम के जीवन में परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता के कारण उसको विश्वासियों का पिता कहा जाता है। अब्राहम के विश्वास को दर्शाने वाला सबसे उत्तम उदाहरण है जब परमेश्वर ने अब्राहम से इसहाक को बलि चढ़ाने को कहा, तब अब्राहम ने बिना सवाल किए परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए तैयार हुआ। अब्राहम ने परमेश्वर की वाचा पर विश्वास किया और यह भी विश्वास किया कि परमेश्वर इसहाक को मरे हुओं से जीवित करने में सामर्थी है। परमेश्वर ने अब्राहम के विश्वास को पाकर इसहाक को अद्भुत तरीके से छुड़ाया। याकूब और एसाव। इसहाक के दो पुत्र हुए, एसाव और याकूब। परमेश्वर ने अब्राहम से जो वायदा किया था कि उसको एक बड़ी जाति बना दी जाएगी, याकूब के द्वारा ही पूरा होना था। याकूब का अर्थ है धोखा देने वाला या चालाकी से दूसरे का स्थान लेने वाला। अपने नाम के अनुसार भी याकूब ने दो बार एसाव को धोखा दिया। पहले उसने एसाव के पहलौठेपन के अधिकार को हासिल कर लिया और बाद में उसने इसहाक से उन आशीषों को छीन लिया जो एसाव को मिलने थी। बाद में परमेश्वर ने याकूब का नाम इज़राइल रखा, क्योंकि वह परमेश्वर से भी लड़ाई लड़कर जीत गया था। इज़राइल का अर्थ है परमेश्वर से कुशलता पूर्वक लड़ने वाला। याकूब और एसाव। याकूब के 12 पुत्र हुए थे, वे ये हैं: रूबेन, शिमोन, लेवी, यहूदा, जबुलून, इस्साकार, दान, गाद, आशेर, नप्ताली, यूसुफ और विन्यामिन। इन 12 के नाम से इज़राइल जाति के 12 कुल जाने जाते हैं। याकूब इन 12 में से सबसे ज्यादा यूसुफ से प्रीति रखता था, इसलिए यूसुफ के बड़े भाई उसे जलन रखते थे। वे यूसुफ के प्रति अधिक द्वेष रखते थे। जब उसने उन्हें अपने स्वप्नों के विषय में बताया, जिनका अर्थ यह था कि एक दिन यूसुफ उन सब पर राज्य करेगा, इसलिए उन्होंने यूसुफ को मिस्र जाने वाले व्यापारियों के हाथ बेच दिया। मिस्र में यूसुफ को बंदी गृह में जाना पड़ा, जबकि उसने कुछ भी अपराध नहीं किया था, परंतु परमेश्वर यूसुफ के साथ था। फिरौन ने भविष्य के आने वाले अकाल के समय में दो स्वप्न देखे, जिनका अर्थ उसको कोई नहीं बता सका, परंतु यूसुफ ने उन स्वप्नों का अर्थ और अकाल से बचने का रास्ता भी फिरौन को बताया। फिरौन ने यूसुफ को मिस्र देश का प्रधानमंत्री ठहराया। यूसुफ के कहने के अनुसार सब देशों में अकाल आरंभ हुआ और कनान देश में भी अकाल आया। तब यूसुफ के भाई अन्न लेने के लिए मिस्र आए, क्योंकि उस समय मिस्र में अन्न था। उन्होंने यूसुफ को दंडवत किया। इस प्रकार यूसुफ का स्वप्न पूरा हुआ, जो उसने अपने भाइयों के विषय में देखा था। याकूब और उसका पूरा परिवार मिस्र में लाए गए। यूसुफ ने उनको मिस्र के गोशेन देश में बसाया। इजरायलियों का मिस्र से निकलना। इजरायलियों के मिस्र देश से छुड़ाए जाने की घटना महत्वपूर्ण है। इजरायली लोग इस घटना को कभी नहीं भूलते। वे परमेश्वर को इस रूप में स्मरण करते हैं कि वे उनको दासत्व के घर अर्थात मिस्र से निकाल लाने वाला परमेश्वर है। मिस्र में इजरायलियों का दासत्व। मिस्र में इजरायलियों की संख्या बहुत बढ़ गई। यूसुफ के समय के बाद एक ऐसा फिरौन मिस्र में शासन करने लगा जो यूसुफ को नहीं जानता था। उसको इस बात का डर लगा कि युद्ध के समय इजरायली लोग शत्रुओं से मिलकर उससे लड़ाई करेंगे। फिरौन ने इजरायल से कठिन मजदूरी करवाई। फिरौन ने इजरायल के नवजात बालकों को घात करने के लिए आज्ञा दी, परंतु इजरायल धाइयों के कारण वह योजना विफल हो गई। फिर फिरौन ने यह आज्ञा दी कि इजरायलियों के जितने भी बेटे उत्पन्न होते हैं उनको नील नदी में फेंक दिया जाए। मूसा का बचाया जाना और परमेश्वर द्वारा बचाया जाना और उसका चुनाव। मूसा वह व्यक्ति था जिसको परमेश्वर ने अपने लोगों के बचाव के लिए चुना था। उसके जन्म के 3 महीने बाद उसकी माता ने उसे एक टोकरी में रखकर नील नदी के किनारे छोड़ दिया था। फिरौन की बेटी ने वह बालक को पाया और उसने उसका नाम मूसा रख दिया। मूसा फिरौन के महल में पला और बढ़ा। एक दिन मूसा ने देखा कि एक मिस्री एक इजरायली को मार रहा है। इजरायली को बचाने के लिए मूसा ने मिस्री को मार डाला। यह बात फिरौन तक पहुंची और मूसा डर कर मिद्यान देश को भाग गया। इजरायली लोगों ने अपनी पीड़ा के कारण परमेश्वर को दुहाई दी। परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक और याकूब से की गई वाचा को स्मरण किया। परमेश्वर मूसा को होरेब पर्वत पर एक जलती हुई झाड़ी के बीच में प्रकट हुआ। वह झाड़ी जल रही थी, परंतु भस्म नहीं हो रही थी। परमेश्वर ने कहा कि वह इजरायलियों की पीड़ा को देखकर और उनकी दुहाई को सुनकर उन्हें बचाने के लिए उतर आया है। परमेश्वर ने यह भी कहा कि मूसा ही वह व्यक्ति होगा जो इजरायलियों को मिस्र देश से निकाल ले आएगा। परमेश्वर ने मूसा को अपना भी नाम प्रकट किया, मैं जो हूँ सो हूँ, मैं हूँ अर्थात यहोवा। यहोवा ने मूसा की सहायता के लिए हारून को दिया, क्योंकि मूसा जीप का भद्दा था। उसके लिए हारून फिरौन से बात करता था। 10 विपत्तियां। मूसा और हारून ने फिरौन से कहा कि यहोवा की आराधना करने के लिए इजरायलियों को छोड़ दे, परंतु फिरौन ने उनकी बात ना मानी। उसने इजरायलियों के काम को और कठिन बनाया। इसके पश्चात परमेश्वर ने मिस्र में एक के बाद एक 10 विपत्तियां भेजी। हर एक विपत्ति के कारण मिस्री बहुत पीड़ित हुए, लेकिन इजरायलियों पर उनका कोई असर नहीं हुआ। 9 विपत्तियों के बाद भी फिरौन का मन कठोर बना रहा। 10वीं बार यहोवा ने ऐसी विपत्ति भेजी कि मिस्र के सारे पहिलौठे मर गए। इसके पश्चात फिरौन ने इजरायलियों को मिस्र से जाने दिया। यहोवा ने मूसा से कहा था कि वह न्याय के महान कार्यों द्वारा इजरायलियों को मिस्र से निकाल लाएगा, और ऐसा ही हुआ। जो विपत्तियां मिस्रियों के ऊपर भेजी गईं, वे उनके विभिन्न देवताओं के ऊपर परमेश्वर के न्याय के काम थे। इन विपत्तियों के द्वारा यहोवा ने यह प्रकट किया कि वह मिस्र के सब ईश्वरों से बड़ा और अति सामर्थी है। फसह का पर्व। मिस्र में 10वीं विपत्ति भेजी, तब मिस्र के सब पहिलौठे मर गए। जब परमेश्वर ने मिस्र में 10वीं विपत्ति भेजी, तब मिस्र के सब पहिलौठे मर गए। लेकिन इसराइलियों के लिए यह आनंद का समय था, जैसे यहोवा ने उनसे कहा था। उन्होंने एक वर्ष के निर्दोष मेमने के लहू को अपने दरवाजे के आलंगों और चौखटों के सिरों पर लगा दिया था, इसलिए विपत्ति उन पर नहीं आई। इसके तुरंत बाद फिरौन और सारे मिस्रियों ने इजरायलियों से मिस्र से तुरंत निकल जाने को कहा। इजरायली लोग अपने भोजन का प्रबंध नहीं कर पाए थे और उनका आटा खमीरा नहीं हुआ था। वे बरबस बाहर कर दिए गए थे। यह उस महीने का 14वां दिन था, क्योंकि उस रात यहोवा ने इजरायलियों को मिस्र से छुड़ाया था। इजरायलियों के बीच यह रात समस्त पीढ़ियों में मनाया जाता है। तो फसा का पर्व और अखमीरी रोटी का पर्व इस प्रकार आरंभ हुआ। इजरायलियों को मिस्र से निकलने की रात वध किया गया एक वर्ष का निर्दोष मेमना और उसका लहू यीशु मसीह और उसके लहू के प्रतीक हैं। लाल समुद्र को पार करना। यहोवा इजरायलियों को दिन में मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभे में और रात को आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चला। इजरायली लोग लाल समुद्र के किनारे आए। फिरौन और उसकी सेना इजरायलियों का पीछा करते हुए आए, लेकिन यहोवा ने लाल समुद्र के बीच सूखी भूमि का रास्ता निकाला, ताकि इजरायली लोग उसमें से होकर समुद्र पार कर सकें। मिस्री भी इजरायलियों का पीछा करते हुए लाल समुद्र के बीच में गए, लेकिन यहोवा ने लाल समुद्र के पानी को फिर से उसकी पूर्व स्थिति में वापस लाया। फिरौन और उसकी सेना पानी में डूब गए। इस प्रकार यहोवा ने इजरायलियों के लिए मिस्र के विरुद्ध युद्ध किया और फिरौन और उसकी सेना को नाश कर दिया। लाल समुद्र को पार करने से वाचा की भूमि में पहुंचने तक इजरायलियों के लिए मिस्र से कनान देश जाने के लिए आसान रास्ता था पलिश्तियों के देश का रास्ता। फिर भी यहोवा ने उनको लाल समुद्र को पार कराकर जंगल के रास्ते से चलाया। उसके बाद ही वे वाचा की भूमि में पहुंचे। इस लंबे रास्ते को अपनाने के लिए यहोवा के पास कई कारण थे। जैसे पहला, यह संभावना थी कि पलिश्तियों के देश में युद्ध देखकर इजरायली मिस्र को लौट जाएं। दूसरा, फिरौन और उसकी सेना को लाल समुद्र में डालकर उनका न्याय करने के लिए। तीसरा, यहोवा सीने के पर्वत पर इजरायली लोगों से वाचा बांधना चाहता था। चौथा, जंगल के रास्ते से चलाकर यहोवा उनको नम्र बनाना चाहता था। पांचवा, वह उनकी आज्ञाकारिता को परखना चाहता था। और छठवा, यहोवा उनको यह भी सिखाना चाहता था कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं, परंतु यहोवा के मुंह से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहता है। इजरायलियों का कुड़कुड़ाना। यहोवा के आश्चर्य कर्मों को देखने पर भी इजरायली लोग उस पर पूरी तरह विश्वास नहीं किए, क्योंकि यात्रा के बीच पानी और भोजन ना मिलने के कारण मूसा और यहोवा के विरुद्ध बार बार कुड़कुड़ाए, जिसके लिए कई बार उनको दंड भी मिला। मन्ना। मन्ना वह भोजन या वस्तु थी जो यहोवा ने इजरायलियों को उनकी जंगल की यात्रा के समय दिया था। इजरायली लोग कनान देश की सीमा पर पहुंचने तक मन्ना खाते रहे। इजरायल से परमेश्वर की वाचा। मिस्र से निकले हुए 3 महीने के बीतने के दिन इजरायली सीने के जंगल में पहुंचे। सीने पर्वत पर परमेश्वर ने मूसा से बातें की और कहा कि यदि इजरायली लोग यहोवा की बात को मानकर उसकी वाचा का पालन करेंगे तो सब जातियों से वे यहोवा के लिए निज धन, याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरेंगे। लोग यहोवा की बातों को मानने के लिए तैयार हुए। यहोवा ने सीने पर्वत की चोटी पर गरजते बादल और बिजली के बीच में से मूसा से बातें की और इजरायलियों को मानने के लिए 10 आज्ञाएं और कई अन्य व्यवस्थाएं दी। उन आज्ञाओं और व्यवस्थाओं को सुनने पर इजरायली फिर से उनका पालन करने को तैयार हुए। इसके बाद यहोवा ने लोगों से वाचा बांधी और इसके प्रतीक में मूसा ने लोगों पर लहू छिड़काया और कहा, यह उस वाचा का लहू है जो यहोवा ने इन सब वचनों के अनुसार तुमसे बांधी है। मिलाप वाला तंबू। परमेश्वर का लोगों से वाचा बांधने के बाद मूसा फिर सीने पर्वत पर चढ़ गया। वह 40 दिन और 40 रात यहोवा की उपस्थिति में रहा। इस समय यहोवा ने मूसा को पत्थर पर 10 आज्ञाओं को लिखी हुई 2 पट्टिकाएं दी। साथ ही वहां परमेश्वर ने मूसा को आदेश दिया कि एक तंबू बनाई जाए जिसमें वह अपने लोगों के मध्य निवास कर सके। इजरायलियों ने उस तंबू को उसी रूप में बनाया जिस रूप में उसे बनाने के लिए उसे यहोवा ने आदेश दिया था। उस तंबू को मिलाप वाला तंबू कहा जाता था। वह तंबू यहोवा का तंबू, यहोवा का भवन, साक्षी का तंबू, निवास आदि नामों से भी जाना जाता था। उसकी बनावट उस प्रकार से थी कि उसे सफलतापूर्वक जोड़ा जा सके, अलग किया जा सके और ले जाया जा सके। इजरायली लोग अपनी यात्रा में उसे कनान ले गए और अपनी यात्रा के दौरान उसे अनेक बार स्थापित किए। बाद में इस तंबू के स्थान में यरूशलेम में एक मंदिर बनाया गया। मिलाप वाले तंबू के चारों ओर एक आंगन था। आंगन में 2 वस्तुएं रहती थीं, एक होम बलि की वेदी और एक हौदी जिसमें याजक हाथ पांव धोते थे। तंबू के भीतर 2 भाग थे। पहला भाग पवित्र स्थान कहलाता था जिसमें 3 वस्तुएं रहती थीं, एक 7 द्वीपों वाला दीवट, पवित्र रोटी के लिए एक मेज और धूप जलाने के लिए एक वेदी। दूसरा भाग परम पवित्र स्थान या महापवित्र स्थान कहलाता था जिसको पवित्र स्थान से विभाजित करने के लिए एक पर्दा रहता था। महापवित्र के भीतर वाचा का संदूक रहता था। पवित्र स्थान में केवल याजक लोग ही प्रवेश कर सकते थे। परम पवित्र स्थान में केवल महायाजक वर्ष में 1 बार प्रवेश करता था, जब वह अपने और लोगों के भूल चूक के लिए क्षमा मांगने हेतु बलि पशु का लहू प्रायश्चित के ढकने पर छिड़कता था। प्रायश्चित का ढकना वह सजावटी ढक्कन था जो वाचा के संदूक के ऊपर रहता था और वह परमेश्वर के सिंहासन को दर्शाता था। इसको अनुग्रह का सिंहासन भी कहा जाता था। वाचा के संदूक में 10 आज्ञाओं वाली पत्थर की पट्टियाएं, मन्ना से भरा हुआ सोने का पात्र और हारून की छड़ी जिसमें फूल फल आ गए थे रखी थी। मिलाप वाले तंबू में दिन को बादल छाया रहता था जो रात को आग सा दिखाई देता था। जब जब वह बादल तंबू पर से उठ जाता तब तब इजरायली प्रस्थान करते थे और जिस स्थान पर बादल ठहर जाता वही इजरायली डेरे खड़े करते थे। तो मित्रों, इजराइल के इतिहास के पहले भाग में आपने अब तक यह सुना। अगले भाग में हम सुनेंगे इजराइल द्वारा वाचा का तोड़ना और वाचा की पुनः स्थापना। प्रभु आप सबको आशीष दें।